हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन अबीर ने गजाला जी की ओर देखते हुए कहा था, मैं जानता हूँ, इतने सालों के बाद अपनी माँ को देखकर तुम्हें उनके साथ रहने का दिल कर रहा है, और गुस्से में तुम कह रहे हो तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारी प्यारी चीज, तुम्हारी माँ को मैंने कभी अपनी माँ नहीं माना है, और ना ही इन्हें तुमसे चुराया है। अबीर ने जानबूझकर बात पलट दी थी, मानो वो ज़ोया के बारे में नहीं बल्कि अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हो। तब अबीर ने कहा, तुम ले जा सकते हो अपनी माँ को अपने साथ, अभी राठौर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तभी अरहम बीच में बोल पड़ा था, हाँ हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, अरमान भाई माँ की ही बात कर रहे हैं। अरहम को लगा था कि अबीर अरमान की बोली गई बात को ज़ोया से नहीं बल्कि गजाला जी के लिए बोल रहा है, और जब अबीर ने गजाला जी के जुड़े हुए हाथ देखे तो उसने एक नज़र अकरम की ओर देखी और उसने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर अबीर ने अपने आदमियों को इशारा किया, जिन्होंने अरमान और अरहम को गन पॉइंट पर ले रखा था, उन्हें वहां से जाने का इशारा किया और अरमान और अरहम की जान बख्श दी, और अरमान की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरमान ठाकुर, आओ आओ, तुम्हारा अबीर राठौर की दुनिया में स्वागत है। मैं नहीं जानता था तुमने ये सब कुछ अपनी माँ को वापस पाने के लिए किया था, सो अबीर राठौर तुम्हें माफ करता है। ऐसा कहकर अबीर ने अरमान को बैठने के लिए एक सीट ऑफर की, और अरमान, अरहम और अबीर पर एक सरसरी सी नज़र डालता हुआ अबीर के ठीक सामने टांग पर टांग रखकर बैठ गया। अबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला था, अरमान ठाकुर, तुझे पता है तो जिंदा क्यों है? तू केवल जिंदा इसलिए है क्योंकि तेरी माँ ने तेरी जान की भीख मांगी है, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा तेरी जान लेने में। अबीर की बात सुनकर अरमान की आंखें एकदम सुर्ख हो चुकी थीं, और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अरहम एकदम से अबीर के पास गया और उसके बहुत करीब जा बैठा और बोला था, अबीर भाई, देखिए, हम लोगों के आपस में कोई सगा रिश्ता नहीं है, लेकिन जिनसे हमारा सगा सौतेला रिश्ता है उनकी वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी एक रिश्ते की डोर में बंध चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूँ शायद आप इस रिश्ते को इस तरह से एक्सेप्ट न कर पाएं, तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा ऑफर देता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको देश विदेश में अपने बिजनेस को फैलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अरहम ने अबीर राठौड़ की पसंद नापसंद बहुत पहले ही उसकी ज़िंदगी में आने से पहले जान ली थी, ताकि वो अबीर की ज़िंदगी में पूरी तरह से घुस पाए। सो अरहम ने अबीर की उस कमज़ोरी को ही अपना निशाना बनाया था। तब अबीर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तब अरहम बोला, अबीर भाई, जहाँ तक मुझे पता है आपका बिज़नेस 18 देशों में फैला हुआ है, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, लेकिन क्या आपने एक चीज़ पर गौर किया है? आपका बिज़नेस केवल विदेशों में है, लेकिन आपके अपने देश भारत में आपका कोई नामो निशान तक नहीं है। अगर आप अरमान भाई के साथ हाथ मिला लेते हैं तो अरमान भाई आपका परचम हिंदुस्तान में भी लहरा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, मेरी डील कोई घाटे का सौदा नहीं है। अरहम की बात सुनकर अबीर अकरम की ओर देखकर मुस्कुराया और अरहम से बोला था, ठीक है, तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो, और हाँ, 2-4 दिन जब तक तुम लोग अमेरिका में हो तो तुम लोग अभी राठौड़ के मेंशन में रह सकते हो, ओके? तब अबीर ने रिया की ओर इशारा किया और बोला था, मिसेज अकरम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपकी बिरयानी अभी तक बनी नहीं है? तब रिया ने कहा, नहीं नहीं अबीर जी, बिरयानी एकदम तैयार है, बस आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ। अबीर ने रिया को सबके सामने मिसेज अकरम कहकर पुकारा था, इससे रिया बेहद खुश थी। आज पहली बार उसे अपनी इज्जत वापस मिलती हुई सी महसूस हुआ था। अरमान और अरहम भी रिया की ओर देख रहे थे। अरमान वो इंसान था जिसने अपने भाई को रिया नाम का खिलौना अगवा करके दिया था, और रिया जब उसके भाई के चंगुल से निकल भागी थी तब अरमान ने रिया समेत पूरे परिवार को मरवाने की कोशिश की थी अपने आदमी वसीम के द्वारा, जिसे बाद में ज़ोया ने उसका प्राइवेट पार्ट कटवाकर मरवा डाला था। रिया के मन में उन दोनों भाइयों को लेकर सब कुछ घूम रहा था। उसका मन तो कर रहा था इन दोनों को यहीं मार गिराए, लेकिन नहीं, उन लोगों की सज़ा का टाइम अभी नहीं आया है, और इन्हें सज़ा देने का असली हक सिर्फ और सिर्फ ज़ोया का है। बस कुछ महीनों की बात और है। रिया अपने सोच में गुम बिरयानी लगाने के लिए किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अबीर अपने कमरे में चला जाता है और उसे अपना कमरा खाली महसूस होता है। जोया के बिना अब वो एक पल भी जीने के बारे में नहीं सोच सकता है। लेकिन उसने जोया को उसकी भलाई के लिए ही खुद से दूर किया था। वहीं हॉल में बैठे हुए अरमान की नज़रें अबीर राठौर के एक एक कमरे की ओर जा रही थीं। अरमान बस यही सोच रहा था कि बस किसी न किसी कमरे से
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लेकिन अबीर ने गजाला जी की ओर देखते हुए कहा था, मैं जानता हूँ इतने सालों के बाद अपनी माँ को देखकर तुम्हें उनके साथ रहने का दिल कर रहा है और गुस्से में तुम कह रहे हो तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारी प्यारी चीज़ तुम्हारी माँ को मैंने कभी अपनी माँ नहीं माना है और ना ही इन्हें तुमसे चुराया है। अबीर ने जानबूझकर बात पलट दी थी, मानो वो जोया के बारे में नहीं बल्कि अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हो। तब अबीर ने कहा, तुम ले जा सकते हो अपनी माँ को अपने साथ, अबीर राठौर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तभी अरहम बीच में बोल पड़ा था, हाँ हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, अरमान भाई माँ की ही बात कर रहे हैं। अरहम को लगा था कि अबीर अरमान की बोली गई बात को जोया से नहीं बल्कि गजाला जी के लिए बोल रहा है, और जब अबीर ने गजाला जी के जुड़े हुए हाथ देखे तो उसने एक नज़र अकरम की ओर देखी और उसने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर अबीर ने अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने अरमान और अरहम को गन पॉइंट पर ले रखा था, उन्हें वहां से जाने का इशारा किया और अरमान और अरहम की जान बख्श दी, और अरमान की ओर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरमान ठाकुर आओ आओ, तुम्हारा अबीर राठौड़ की दुनिया में स्वागत है। मैं नहीं जानता था तुमने ये सब कुछ अपनी माँ को वापस पाने के लिए किया था, सो अबीर राठौर तुम्हें माफ़ करता है। ऐसा कहकर अबीर ने अरमान को बैठने के लिए एक सीट ऑफर की, और अरमान अरहम और अबीर पर एक सरसरी सी नज़र डालता हुआ अबीर के ठीक सामने टांग पर टांग रखकर बैठ गया। अबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला था, अरमान ठाकुर तुझे पता है तू जिंदा क्यों है? तू केवल जिंदा इसलिए है क्योंकि तेरी माँ ने तेरी जान की भीख मांगी है, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा तेरी जान लेने में। अबीर की बात सुनकर अरमान की आंखें एकदम सुर्ख हो चुकी थीं और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अरहम एकदम से अबीर के पास गया और उसके बहुत करीब जा बैठा और बोला था, अबीर भाई देखिए, हम लोगों के आपस में कोई सगा रिश्ता नहीं है, लेकिन जिनसे हमारा सगा सौतेला रिश्ता है उनकी वजह से हम लोग ना चाहते हुए भी एक रिश्ते की डोर में बंध चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूँ शायद आप इस रिश्ते को इस तरह से एक्सेप्ट न कर पाएं, तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा ऑफर देता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको देश विदेश में अपने बिजनेस को फैलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अरहम ने अबीर राठौर की पसंद नापसंद बहुत पहले ही उसकी ज़िंदगी में आने से पहले जान ली थी, ताकि वो अबीर की ज़िंदगी में पूरी तरह से घुस पाए। सो अरहम ने अबीर की उस कमज़ोरी को ही अपना निशाना बनाया था। तब अबीर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तब अरहम बोला, अबीर भाई जहाँ तक मुझे पता है आपका बिजनेस 18 देशों में फैला हुआ है, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, लेकिन क्या आपने एक चीज़ पर गौर किया है? आपका बिजनेस केवल विदेशों में है, लेकिन आपके अपने देश भारत में आपका कोई नामो निशान तक नहीं है। अगर आप अरमान भाई के साथ हाथ मिला लेते हैं तो अरमान भाई आपका परचम हिंदुस्तान में भी लहरा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, मेरी डील कोई घाटे का सौदा नहीं है। अरहम की बात सुनकर अबीर अकरम की ओर देखकर मुस्कुलाया और अरहम से बोला था, ठीक है, तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो, और हाँ, 2-4 दिन जब तक तुम लोग अमेरिका में हो तो तुम लोग अबीर राठौर के मेंशन में रह सकते हो, ओके? तब अबीर ने रिया की ओर इशारा किया और बोला था, मिसेज अकरम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपकी बिरयानी अभी तक बनी नहीं है? तब रिया ने कहा, नहीं नहीं अबीर जी, बिरयानी एकदम तैयार है, बस आप फ्रेश होकर आ जाइए, तब तक मैं खाना लगवा देती हूँ। अबीर ने रिया को सबके सामने मिसेस अकरम कहकर पुकारा था, इससे रिया बेहद खुश थी। आज पहली बार उसे अपनी इज्जत वापस मिलती हुई सी महसूस हुआ था। अरमान और अरहम भी रिया की ओर देख रहे थे। अरमान वो इंसान था जिसने अपने भाई को रिया नाम का खिलौना अगवा करके दिया था, और रिया जब उसके भाई के चंगुल से निकल भागी थी तब अरमान ने रिया समेत पूरे परिवार को मरवाने की कोशिश की थी अपने आदमी वसीम के द्वारा, जिसे बाद में जोया ने उसका प्राइवेट पार्ट कटवाकर मरवा डाला था। रिया के मन में उन दोनों भाइयों को लेकर सब कुछ घूम रहा था। उसका मन तो कर रहा था इन दोनों को यहीं मार गिराए, लेकिन नहीं, उन लोगों की सजा का टाइम अभी नहीं आया है और इन्हें सजा देने का असली हक सिर्फ और सिर्फ जोया का है। बस कुछ महीनों की बात और है। रिया अपनी सोच में गुम बिरयानी लगाने के लिए किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अबीर अपने कमरे में चला जाता है और उसे अपना कमरा खाली महसूस होता है। जोया के बिना अब वो एक पल भी जीने के बारे में नहीं सोच सकता है। वहीं हाल में बैठे हुए अरमान की नज़रें अबीर राठौड़ के एक एक कमरे की ओर जा रही थीं। अरमान बस यही सोच रहा था कि बस किसी न किसी कमरे से उसे जोया निकलती हुई दिखाई दे जाए और वो उसे लेकर अभी इस देश से चला जाए। वो अबीर और गजाला जी को अपने
तभी अबीर ने अपने एक आदमी से कहा, पिछले 7 दिनों से जोया का कहीं भी अता पता नहीं है। आखिर और कितना टाइम लोगे तुम लोग? पूरे के पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, पुलिस को इन्वॉल्व करो, पूरे शहर में घर घर ढूंढना पड़े तो ढूंढ कर लाओ, लेकिन मुझे हर हाल में जोया चाहिए। तभी रिया वहां आ गई थी और अक्रम का हाथ पकड़ते हुए बोली थी, मैं जानती हूँ आप जोया दी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन आपने उन्हें उस दिन अकेले क्यों जाने दिया था? काश आपने उन्हें अकेले ना जाने दिया होता तो आज जोया दी हमारे बीच हम सबके साथ होती। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द हमें जोया दी मिल जाएगी, फिर हम उन्हें लेकर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे और एक नए सिरे से अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहकर रिया अक्रम के गले लग गई थी और अबीर अक्रम से आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हुए वहां से निकल गया था। और अक्रम ने वहां खड़े अबीर के आदमियों की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बहन को ढूंढ कर ला दो, प्लीज। ऐसा कहकर अक्रम रोने सी सूरत बनाकर रिया के गले लग गया था और वे सब के सब आदमी वहां से चले गए थे। उन लोगों की बातें सुनकर अरमान और अरहम का शौक से बुरा हाल था और अरमान तो मानो दीवार से लगता हुआ चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी टांगों में जान ही न बची हो और वो टूटती फूटती जुबान में बोला था, तूने तो कहा था जोया यहाँ है अभी राठौड़ के घर पर, लेकिन वो तो पिछले 7 दिनों से यहाँ नहीं है, इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला था, अरमान ने अरहम को गुस्से से घूरते हुए कहा था। तब अरहम ने कहा, भाई आप मेरा यकीन करें, वाकई जोया यहीं थी और पिछले 7 दिनों से वो यहाँ नहीं है, ये मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है कसम से। और एक मिनट, अरहम कुछ सोचते हुए बोला था, भाई 7 दिन पहले जोया मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर अरमान के कान खड़े हो गए थे और वो बोला था, क्या? तब अरहम ने कहा, हाँ भाई 7 दिन पहले जोया ने मुझ पर अटैक किया था, मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई थी और मैं बेहोश हो गया था। इसका मतलब है कि उस दिन जोया अबीर राठौड़ के पास नहीं लौटी थी, तो फिर कहाँ गई वो? अबीर उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा है और अभी तक वो नहीं मिली है। भाई मुझे लगता है जोया इस शहर में नहीं है, जरूर वो भाग कर किसी दूसरे शहर चली गई होगी।